समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार देव, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड ऑफ कोर्स इट्स द स्टार्ट ऑफ द वीक, तो नए जोश खरोश से शुरुआत की जाए, सिर्फ न कि इस दिन की, इस पूरे हफ्ते की। एंड ऑफ कोर्स इस जोश में हम लोग आपको सबसे पहला डोज तो हमसे ही मिलता है, वेयर वी ब्रिंग यू अ मिक्स ऑफ न्यूज, important news, and of course we all know that Lok Sabha elections are going on, different phases have already started, kuch end ho chuke hain, to zahir si baat hai bahut si khabrein hongi usse judi hui. Apart from that, in the metro news section we'll give you an update about what's happening in your own city. Now of course mausam ka haal to jante hi hain, and in our last segment where we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today, so all of that in the next half an hour roughly. But let's start with the headlines first. The country is witnessing high voltage campaigning for the Lok Sabha elections, with senior leaders of political parties making all out efforts to garner support in favour of their candidates. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addressed public meetings at Sirsi, Devangere, Bellari and Belgavi in Karnataka yesterday. He assured of his guarantee to make India powerful and ensure security and development. Senior party leader and union minister Amit Shah also addressed election rallies in Mainpuri, Kasganj and Itawa in Uttar Pradesh. Mr. Shah reiterated that his party will not allow anyone to change the reservation of SCs, STs and OBCs. On the other hand, senior Congress leader Rahul Gandhi addressed public meetings at Zalipur under Kendrapara Lok Sabha constituency and promised Pehli Naukri Pakki scheme for the unemployed youth if his party is voted to power at the centre.
इस बीच निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, ओडिशा की 6 सीटें और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई है। नामांकन की जांच 7 मई को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई होगी। मतदान 25 मई को होगा और मतगणना 4 जून को होगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन भरेंगे। वे पहले लखनऊ में एक रोड शो करेंगे और बाद में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन भरने के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के अन्य नेता राजनाथ सिंह के साथ होंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नेता स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से अपना नामांकन आज भरेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ नामांकन भरने के दौरान श्रीमती ईरानी के साथ रहेंगे। यहां एक रोड शो भी होगा। 2019 में श्रीमती ईरानी ने सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने आम चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की अन्य सूची जारी की है। पार्टी ने अमेठी सीट से रवि प्रकाश मौर्य के नाम की घोषणा की है। श्रीमती सबीहा अंसारी आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी। सैयद दानिश संत कबीरनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज हाथरस और आगरा जिले में राजनीतिक जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
The Ministry of Mines, in collaboration with the Shakti Sustainable Energy Foundation, Council on Energy, Environment and Water, and Indian Institute of Sustainable Development, will hold a two-day critical minerals summit from 29th of April to 30th of April at the India Habitat Centre in Lodhi Estate, New Delhi. The Critical Minerals Summit is a pivotal event designed to foster collaboration, share knowledge and drive innovation in the field of critical mineral beneficiation and processing. The summit is set against the backdrop of India's rapid economic growth and ambitious clean energy targets, which underscore the urgent need for securing a domestic supply of critical raw materials essential for key technologies including renewable energy systems and electric vehicles.
मौसम विभाग ने गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में अगले तीन दिनों के लिए गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर लू का प्रकोप भीषण हो सकता है। गर्म हवाएं रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, तेलंगाना, केरल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी भारत में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में बुधवार से तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।
On to sports now. In IPL cricket, Chennai Super Kings won by 78 runs at the M. Chidambaram Stadium in Chennai last night. Chennai Super Kings had set a target of 213 runs before Sunrisers Hyderabad. Chasing the target, Sunrisers scored only 134 runs in 18.5 overs. Put in to bat first, CSK scored 212 for 3 in 20 overs. In the first match yesterday, Royal Challengers Bengaluru defeated Gujarat Titans by 9 wickets at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. RCB overhauled the target of 201, scoring 206 in just 16 overs. Today, Kolkata Knight Riders will take on Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata at 7:30 in the evening. And in women's skeet, Maheshwari Chauhan secured a Paris 2024 quota for India with a silver medal in the Shotgun Olympic Qualification Championship at Doha in Qatar. In the finals yesterday, only 4 of the 6 shooters were eligible to get the quota. Once Asam Porinbay of Kazakhstan crashed out in the 5th and Regina Mestakhedinova of Azerbaijan settled for the 6th spot. The 2 Olympic quotas were confirmed for Maheshwari and qualification leader Victoria Larsson of Sweden. It was the 21st Olympic quota for India in shooting and the 5th in shotgun.
तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और कुछ खेल से जुड़ी खबरें, मौसम की बातें, और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। और अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं अपने महानगरों से जुड़ी खबरों की। तो सायरा, चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद से क्या खबरें हैं आपके पास?
वेल देव, चेन्नई एयरपोर्ट हैज अपग्रेडेड इट्स कार सर्विस विद 13 न्यू गोल्फ कार्स टू अकोमोडेट राइजिंग पैसेंजर नंबर्स एंड अपकमिंग फ्लाइट इंक्रीजेस, इंश्योरिंग एफिशिएंट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिटवीन टर्मिनल्स एंड कैब पिकअप पॉइंट्स। Air passengers will soon have more battery-operated cars to ferry them between terminals, cab pickup points and the airport metro station. The Airports Authority of India is planning to buy 13 battery-operated golf cars to ferry passengers. And the Indian Met Department has said that the temperatures might increase in the next 5 days in interior and some coastal areas of the state. The heat wave condition may continue under high humidity. Temperature is likely to be 50 to 80 degrees over the coastal areas until the 1st of May. And moving on to Bengaluru, the 14 constituencies going to the polls on 7th of May in Karnataka are being prepared with the deputation of manpower and materials. There are 172 police checkposts, 19 forest checkposts and 15 RTO checkposts, keeping an eye on the movement of vehicles. There are over 2 crore 59 lakh voters in this phase, out of which the number of female voters are more than men. For every 1,000 male voters, there are 1,002 female voters in this phase. The election will be held in 28,269 polling booths. Due to severe heat conditions in Bellary, Bagalkota and Kalburgi and hilly areas in Western Ghats, the election authorities are taking suitable measures to ensure essential facilities to the voters. And moving on to Hyderabad, in Telangana, heatwave conditions prevailed in over 15 out of 33 districts and will continue for a week or so, with temperatures soaring between 41 and 45 degrees Celsius. Most parts of the state continue to record temperatures exceeding 45 degrees Celsius yesterday. The Hyderabad Meteorological Centre has issued a yellow alert for the next 2 days, indicating a heat wave warning, while an orange alert has been issued for 1st of May, signalling higher heat wave conditions. The scorching weather is expected to continue until the 4th of next month. The forecast by IMD Hyderabad stated that heat wave conditions are likely to prevail at isolated pockets in over 15 districts, including Adilabad, Kumaram Bhim, Asifabad and Jogulamba Garhwal districts of the state. Meanwhile, isolated scattered rains are forecast for the next 2 days across the state. Maximum temperature recorded yesterday in Nalgonda district was 45.4 डिग्री सेल्सियस, वाइल अश्वपुरम इन भद्रधरी, कोठगुदम एंड मंगपेट इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड 45.3 डिग्री सेल्सियस. सो देन दिस वॉज द बज दैट आई हैड फ्रॉम थ्री सिटीज ऑफ चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. व्हाट इज द लेटेस्ट दैट यू हैव फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता?
जी, 25 मई को छठे चरण के मतदान की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है. पिछले 2 चुनावों में सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है. अधिकारियों के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को सुचारू और आसान बनाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं. नामांकन 6 मई तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किए जा सकते हैं. दस्तावेजों की जांच 7 मई को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई होगी. इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने राजधानी में प्रचार तेज कर दिया है. सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं. इसी कड़ी में कल चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने अपने अपने क्षेत्रों में सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जनसभाएं की और कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में लगी है. पश्चिमी दिल्ली से आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा और पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने अपने क्षेत्रों में जनता के साथ संवाद किया और नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती, दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध सीआर पार्क में एक वॉकथॉन में शामिल हुए. उत्तर पूर्वी से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने मलकागंज, नंदनगरी और वजीराबाद समेत अन्य क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया. पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क यात्राएं निकाली. वहीं नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अम्बेडकर बस्ती और आरकेपुरम सेक्टर 6 में जनसंपर्क यात्राएं की. दक्षिण दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आयानगर, संगम विहार और कालकाजी में जनसभाओं का आयोजन किया. चांदनी चौक से भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने शालीमार बाग और किशनगंज समेत अन्य इलाकों में स्थानीय जनता से बातचीत की. दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे पार्टी ने मंजूर कर लिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में श्री लवली ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस की इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के आधार पर किया गया था. श्री लवली ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया, जिससे दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में सार्वजनिक ढांचा चरमरा गया है, जबकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में विकास के काफी कार्य किए गए थे. पार्टी छोड़ने के आरोपों का खंडन करते हुए श्री लवली ने कहा कि न ही वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं और न ही किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं. इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं. एक प्रेस वार्ता में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस स्वयं विपक्षी गठबंधन को तोड़ रही है. श्री सचदेवा ने कहा कि श्री लवली ने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार और टिकट के बंटवारे को मुख्य कारण बताया है. आम आदमी पार्टी ने श्री लवली के इस्तीफे पर बोलने से इनकार कर दिया है. फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कल 75 लाख रूपये मूल्य की 10,500 लीटर अवैध शराब बरामद की. जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी स्थान पर अवैध रूप से शराब की सप्लाई न हो, इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा फरीदाबाद में 6 स्थानों पर नाके लगाकर चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है. और मुंबई का रुख करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने रविवार को मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मध्यावधि वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया. सम्मेलन का आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस और बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा किया गया था. राज्यपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रांतिकारी तकनीक बताते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य सेवा के परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए तैयार है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि एआई निदान और उपचार की लागत को कम करने में मदद करेगा. राज्यपाल ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों से प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि मरीजों के साथ अच्छा संचार और व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखें. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में रविवार सुबह अभिनेता साहिल खान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने हाल ही में खान से महादेव सट्टेबाजी ऐप के बारे में पूछताछ की थी, जो कथित तौर पर पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों पर सट्टेबाजी में सक्षम बनाता है। अपराध शाखा राज्य में कुछ वित्तीय और रियल एस्टेट कंपनियों और महादेव सट्टेबाजी एप्लीकेशन के प्रमोटरों के बीच कथित अवैध लेनदेन की भी जांच कर रही है। उधर मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 3 अलग अलग मामलों में 1,20,00,000 रूपये मूल्य का तस्करी का सोना जब्त किया है। 2 मामलों में विदेशी नागरिक तस्करी में शामिल थे। सोना मलाशय, हैंडबैग और यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले इनरवियर में छुपाया गया था। सीमा शुल्क विभाग ने इस महीने मुंबई हवाई अड्डे पर विभिन्न मामलों में अब तक 30 करोड़ रूपये से ज्यादा कीमत का सोना जब्त किया है। महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरों के बाद अब हम बात करते हैं महानगरों के मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी बढ़ रही है। देश के बाकी शहरों की ही तरह हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय धूप रहेगी और तेज हवाएं चलेंगी। सुबह का तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में पारा 40 डिग्री पहुंच सकता है, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप दिल्ली को भी अब सताएगा। उधर मुंबई में साफ आसमान और शुष्क मौसम के बीच हीटवेव का शिकंजा कस सकता है। यहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा, अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में भी हीटवेव यानी लू का अलर्ट जारी है। दिन में तापमान 42 डिग्री को भी पार कर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और सायरा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है, मुझे लगता है।
यस, एब्सोल्युटली। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऑल दीज 3 सिटीज आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फेयरली हाई टेम्परेचर्स। चेन्नई विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, टेम्परेचर विल होवर बिटवीन 28 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru will also have a partly cloudy sky. Minimum temperature was 22 and maximum will be around 38 degrees Celsius, while Hyderabad will have a partly cloudy sky and temperature will hover between 28 and 41 degrees Celsius.
और अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास में दर्ज 29 अप्रैल के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र अपने श्रोताओं के लिए करते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1991 में बांग्लादेश के चट्टगांव में आए चक्रवाती तूफान में 1,38,000 लोगों के मारे जाने की खबर मिली थी और लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गए थे।
एंड ऑन दिस डे आई टेक यू बैक टू द ईयर 1639 व्हेन दिल्लीज रेड फोर्ट कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड बाय लेइंग द फाउंडेशन स्टोन बाय शाहजहां। द फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 13 May 1646, सो वी कैन से इट टुक दैट मच टाइम टू कम्प्लीट द रेड फोर्ट एंड टुडे ऑफकोर्स इट्स द प्राइड ऑफ आर कंट्री, जिसमें सब लोग जानते हैं दैट इंडिपेंडेंस डे पे जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो वहीं से शुरू होती है। On this day in 1939, Netaji Subhash Chandra Bose resigned from the Congress and established his own party, the Forward Bloc, and he created a political deadlock in India. Also on this day in 1957, the National Civil Defense College was founded at Nagpur as the Central Emergency Relief Training Institute. It functions as the training wing of the Emergency Relief Organization of the Government of India. And on this day in 1998, India and Myanmar agreed upon steps to ensure transporter security, cooperation in the fight against trafficking of narcotics, and implementation of mutually beneficial cross-border projects.
जी, और इससे पहले 1993 में आज ही के दिन पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया और जिसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। वर्ष 2005 में सीरिया ने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाया। लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में ब्रिटिश राजकुमार विलियम्स और कैट मिडलटन का विवाह आज के दिन वर्ष 2011 में हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। और इस क्रम में सबसे पहले याद करते हैं हिंदी कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता बालकृष्ण शर्मा नवीन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 में ग्वालियर के भयाना में हुआ था। इनके पिता श्री जमनालाल शर्मा वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्रीनाथ द्वारा में रहते थे, जहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनकी मां इन्हें ग्वालियर राज्य के शाजापुर में ले आईं। यहां से प्रारंभिक शिक्षा लेने के उपरांत उन्होंने उज्जैन से 10वीं और कानपुर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कवियों की चिर उपेक्षिता उर्मिला का लेखन उनसे 1921 में आरंभ कराया जो सन 1934 में पूरा हुआ और प्रकाशित सन 1957 में हुआ। इस काव्य में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता स्थूल नैतिकता का प्रयोजन स्पष्ट देखे जा सकते हैं, परंतु मूलतः स्वच्छंदतावादी गीत तत्व प्रधान नवीन का ये प्रयास प्रबंधत्व की दृष्टि से बहुत सफल नहीं कहा जा सकता। 6 सर्गों वाले इस महाकाव्य ग्रंथ में उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा कही गई है, पर वर्णन प्रधान कथा के मार्मिक स्थलों की न तो पहचान है और न ही राम सीता के विराट व्यक्तित्व के आगे लक्ष्मण उर्मिला बहुत ही उभर सके हैं। उर्मिला का विरह अवश्य कवि की प्रकृति के अनुकूल था और कला की दृष्टि से सबसे सरस एवं प्रौढ़ अंश वही है। यूं अत्यंत विलंब से प्रकाशित होने के कारण सम्यक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस ग्रंथ का मूल्यांकन नहीं हो सका, लेकिन ये उनकी महान कृतियों में से एक है।
Today we are also remembering Raja Ravi Varma, a very renowned painter and artist whose works are one of the best examples of the fusion of European academic art with purely Indian sensibility and iconography. Especially he was notable for making affordable lithographs of his paintings available to the public, which greatly enhanced his reach and influence as a painter and public figure. His lithographs increased the involvement of the common man with fine arts and defined artistic taste among the common people. Furthermore, his religious depictions of Hindu deities and works from Indian epic poetry and Puranas have received profound acclaim. He was part of the royal family of erstwhile Parappanad Malappuram district. Raja Ravi Varma was closely related to the royal family of Travancore of present-day Kerala state in India. Later, two of his granddaughters were adopted into the royal family and their descendants comprise the present royal family of Travancore.
जी, और सुविख्यात तबला वादक अल्लाह रखा खां को भी हम आज याद कर रहे हैं जिनकी आज जयंती है। अल्लाह रखा खां भारत के सर्वश्रेष्ठ सोलो और संगीत वादकों में से एक थे, सोलो तबला वादक, और इनकी एक पहचान और ये भी है कि ये सुप्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के पिता हैं। अल्लाह रखा खां 12 वर्ष की उम्र से ही तबले पर ताल में माहिर होने लगे थे। अल्लाह रखा खां ने उस्ताद कादिर बख्श से तबले की तालीम ली। इसी दौरान आपको गायकी सीखने का भी अवसर मिला। मियां कादिर बख्श के कहने पर आपको पटियाला घराने के मशहूर ख्याल गायक आशिक अली खां ने राग दारी और आवाज लगाने के गुर सिखाए। ऐसा माना जाता था कि बिना गायकी सीखे संगीत की कोई भी शाखा कोई भी विधा पूर्ण नहीं होती है। अल्लाह रखा खां ने सन 1945 से 48 के बीच सिनेमा जगत में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इनका मन फिल्मी दुनिया में बहुत समय नहीं लगा। इस बीच अपने अनेक महान संगीत कलाकारों के साथ आपने काम किया, इनमें से कुछ बड़े नाम हैं बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित वसंत राय और पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के साथ अल्लाह रखा खां जी का तबला और निखर कर सामने आया। इस श्रृंखला में 1967 का मोंटेनरी पोप फेस्टिवल तथा 1969 का वुडस्टॉक फेस्टिवल बहुत लोकप्रिय हुए। 1960 तक आप सितार सम्राट पंडित रविशंकर के मुख्य संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार के द्वारा सन 1977 में आपको पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया गया। 1982 में संगीत नाटक अकादमी ने भी अल्लाह रखा खां को अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया।
Today we are also remembering Zubin Mehta, a conductor of Western classical music. In fact, he is the music director emeritus of the Israel Philharmonic Orchestra and conductor emeritus of the Los Angeles Philharmonic. Mehta's father was the founder of the Bombay Symphony Orchestra and Mehta received his early musical education from him. When he was 18, he enrolled in the Vienna State Music Academy, from which he graduated after 3 years with a diploma as a conductor. He began winning international competitions and conducted the Royal Liverpool Philharmonic at the ripe age of 21. Beginning in the 1960s, Mehta gained experience by substituting for celebrated maestros throughout the world. In fact, unke father ka jab zikr hua to I think it's very important to share this trivia with our listeners also, that jo AIR ki signature tune hai hamari, that was of course Walter Kaufman and Zubin Mehta's father. It was their composition.
और आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसिक, रोग और रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत अधिक फिल्मों में अभिनय तो नहीं किया, लेकिन जिस भी फिल्म में उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने किरदार को यादगार बना दिया। हिंदी सिनेमा की 30 से ज्यादा फिल्में करने वाले इरफान को हॉलीवुड में भी पहचाना गया। वो अमाइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में भी काम कर चुके। उन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2017 में प्रदर्शित हिंदी मीडियम फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। 2020 में प्रदर्शित अंग्रेजी मीडियम उनकी प्रदर्शित अंतिम फिल्म रही। इरफान खान का महज 53 वर्ष की अल्पायु में 2020 में आज ही के दिन मुंबई में निधन हो गया था। उनका एक संवाद सुनते हैं जिसके लिए वो बखूबी जाने जाते हैं और लोकप्रिय रहे।
मैं कितना कुछ पीछे छोड़ आया हूं, मेरी फैमिली, जू, इंडिया, आनंदी। मैं समझता हूं कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता।
Today we are also remembering Kedarnath Sharma. Of course, we know him as a director, producer, screenwriter and also lyricist of many Hindi films. While he had great success as director of movies including Neel Kamal, Baure Nain and Jogan, he is most remembered for starting the acting careers of popular actors like Madhubala, Geeta Bali, Raj Kapoor, Mala Sinha, Bharat Bhushan and Tanuja. And we all know that his great success, his big directing break came in 1940 when he was asked to complete the film Tumhair Jeet. Upon its completion, he was given the opportunity to direct his own screenplay for Aulaad Dil Hi To Hai, which met too with some success. And then he was asked to direct Chitralekha, which became a smashing hit and gave Kedar credibility as a director. He would go on to begin producing his own movies, casting Raj Kapoor and Madhubala in their first film, Neel Kamal. He would also cast Geeta Bali in her first movie, Suhag Raat, and later he would team her with Raj Kapoor for the film Baure Nain. That same year, he directed Jogan starring Nargis and Dilip Kumar. In the late 1950s, Jawaharlal Nehru, who had heard Sharma's lyrics, summoned him and asked him to become the director-in-chief of the Children's Film Society. Kedar Sharma would work on many movies for the Children's Film Society, including the film Jaldeep, which would go on to receive international acclaim. In 1958, he would work for 1 year directing movies in Singapore for Shaw Brothers Studio. So we have a song from the film Chitralekha. Let's listen to it.
Sansar se bhaage phirte ho, Bhagwan ko tum kya paoge, is lok kabhi apna na sake, us lok mein bhi pachtaoge, Sansar se bhaage phirte ho।
रामानंद सागर के सुप्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रामायण में सीता की भूमिका निभाकर घर घर में प्रसिद्धि पाने वाली दीपिका चिखालिया का आज जन्मदिन है। उन्होंने राम रूप में अरुण गोविल के साथ धारावाहिक में माता सीता की भूमिका कुछ यूं निभाई कि लोग उन्हें ही सीता समझने लगे। दीपिका चिखालिया ने रामायण के अलावा अन्य कई पौराणिक धारावाहिकों में भी अभिनय किया। 25 जनवरी 1987 को सीरियल रामायण का पहला एपिसोड प्रदर्शित हुआ था। धारावाहिक की लोकप्रियता पर दीपिका चिखालिया का कहना था कि धारावाहिक की लोकप्रियता का एहसास उन्हें तब हुआ जब 5-6 महीने में ही देश और विदेश से फोन आने लगे। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक प्रशंसक मेरे लिए रोज बेलपत्र लेकर आते थे क्योंकि मैं महादेव की पूजा करती थी और वो करीब 4-5 साल तक दरवाजे के पास रखकर चले जाते थे। लोग हमें श्रद्धा से भर कर देखते थे और उनका रामायण में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला संवाद आपको सुनवाते हैं।
मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे।
Today is also Swarnalata's birthday, a singer, and she has recorded over 10,000 songs. In fact, she has also won the National Film Award for this song.
और अब दीजिए अनुमति आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. नमस्कार.